हम सूरह यूसुफ शुरू करते हैं। ये लगातार तीसरी सूरत है जो पैगंबर के नाम पर है। पीछे हम सूरह यूनुस और सूरह हूद पढ़कर आए हैं, और अब ये सूरह यूसुफ। और सूरह यूसुफ जो है वो पूरी की पूरी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर है। मक्का के बिल्कुल आखिरी दौर की सूरत है, और ये दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था, जिसे हम आमुल हुज्न यानी गम का साल भी कहते हैं। जब आपके पुश्तेबान चचा अबू तालिब और आपकी बहुत ही प्यारी और गमगुसार बीवी हजरत खदीजा इंतकाल फरमा जाती हैं, उस दौर में ये सूरत नाजिल होती है। और गालिबन उस दौर में कुफारे मक्का ने यहूदियों के इशारे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए आपसे सवाल किया कि बनी इसराइल के मिस्र जाने का क्या सबब हुआ। और चूंकि मक्का वाले इस वाकये से बिल्कुल बेखबर थे, लिहाजा उनका ये ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस इम्तिहान में उन्हें उल्टी मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि फौरन उसी वक्त हजरत यूसुफ का ये पूरा किस्सा आपकी जुबान पर जारी कर दिया, बल्कि इस किस्से को उस मामले पर चस्पा भी कर दिया जो कुरैश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मामला चल रहा था। बहरहाल इस सूरत में पेशन गोईयां हैं कि जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने साजिश की, मक्का वाले साजिश करेंगे, लेकिन जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उरूज मिला, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज मिलेगा। और जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास रहम करम की भीख मांगने आए थे, इसी तरह एक दिन आएगा कि जब यही कुरैश मक्का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की भीख मांगेंगे। ये बात बिल्कुल तारीख ने साबित कर दी, और ये सारी पेशन गोईयां पूरी हुई। सूरत में बहुत सारे असबाक है मेरे और आपके लिए। हमें ये भी पता चलता है कि जितने भी पैगंबर आए उन्हें मुखालफतों का सामना करना पड़ा, और सबसे पहले अपने खानदान से मुखालफत सहनी पड़ी। और यहाँ पर गम का जिक्र, शदीद गम का जिक्र, और फिर उसका इलाज भी इसके अंदर हमें मिलता है। रिश्तेदारों से कैसे डील करना है, जब इल्जाम लगे तो कैसे रिएक्ट करें, पेरेंटिंग के असूल इसके अंदर हमें सीखने को मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें मेरे और आपके सीखने के लिए कि अगर आपको उरूज और इक्तदार मिले तो रवैया कैसा हो, अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपका रवैया कैसा हो, अगर आप दयारे गैर में हैं और कुफर के माहौल में आप ईमान को किस तरह से बचाएंगे। ये सूरत हर हर दौर में हर तरह के फर्द के लिए, ख्वाह वो औरत है, ख्वाह वो मर्द है, ख्वाह वो वालदैन है, ख्वाह वो बच्चे हैं, हर एक के लिए यकसां रहनुमाई है इसके अंदर। तो देखते हैं इस सूरत में मेरे और आपके लिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती हैं। कोई अभाम नहीं है, कोई इसके अंदर कजी नहीं है। इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून, हमने इसे नाजिल किया कुरान बनाकर अरबी जबान में ताकि तुम इसको अच्छी तरह समझ सको। एक इसका मतलब आप यूं ले लीजिए कि कुरान समझोगे तो अक्लमंद हो जाओगे, और एक इसको यूं भी आप ले लीजिए कि अकल इस्तेमाल करनी है तो कुरान को समझने के लिए इस्तेमाल करो, कुरान को नाफिज करने के लिए अपनी अकल इस्तेमाल करो। नहनु नकुस्सु अलैक अहसन अल-क़सस, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पेराया में वाकयात और हकायक तुमसे बयान करते हैं। ये बेहतरीन किस्सा अल्लाह ताला ने इसको कहा है अहसन अल-क़सस, और इसके अंदर जो भी बात बयान हुई है वो हकीकत पर मबनी है, कोई झूठ और लगवियात इसके अंदर या इजाफी बातें नहीं है। वरना इससे पहले तो इन चीजों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बिल्कुल इस बात का, इस वाकये का इल्म ही नहीं था। अब अल्लाह ताला यहाँ से वाकया शुरू करते हैं। इस काला यूसुफ ली अभी ही या अबत इन्नी रई तो अहद आशरा कौकबा, ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान। बहुत ज्यादा इसके अंदर मोहब्बत और एहतराम है इस लफ्ज के अंदर। और क्या कहते हैं, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं। 11 सितारों से मुराद इनके 11 भाई, और सूरज और चांद से मुराद इनके वालदैन हैं, और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। रई तुहुम ली साजिदीन, किस कदर आजी है, रई तु की तकरार करते हैं, पहले ख्वाब देखा है, 11 सितारे हैं, सूरज और चांद हैं, और जिस बात में बड़ाई है उसे आखिर में बयान कर रहे हैं कि रई तुहुम ली साजिदीन। और साजिदीन जो है عربی زبان کے اندر یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ بے جان چیزوں کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر واقعی وہ یہ بات سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے تو کہتے رہے تو ہم لی ساجدات، لیکن ساجدات کہنے کی بجائے انہوں نے ساجدین کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف اتنے سمجھدار تھے کہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ بے جان چیزیں نہیں ہیں، یہ جیتے جاگتے کردار ہیں. قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک، باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنا بھائیوں کو نہ سنانا. اچھا، اس کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے باپ اور بیٹے کا تعلق، اور کتنا کانفیڈنس ہے باپ نے جو اپنے بیٹے کو دیا ہوا ہے کہ وہ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، اور باپ اپنے بیٹے کی بات غور سے سن بھی رہے ہیں اور اس کا صحیح جواب بھی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ٹال رہے ہوں. اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے متعلق یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خوشحالی سے یا نعمت کا ذکر سنے گا تو اسے حسد ہوگا اور وہ نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو ایسے فرد کے سامنے اپنی کامیابی کا یا کسی بھی ایسی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت کا اظہار کر دینا جائز ہے. یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے آپ بتائیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھ لیجئے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے میں ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو یہ آج کے دور میں تو اس چیز کو بہت زیادہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اور چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو اور خوشیوں کو فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہم سے حسد کرتا ہے، اور پھر ہم خود ہی اپنے آپ کو نظر لگوا لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو بھی تھوڑا سا سیف سائڈ کر رہے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے. اصل میں شیطان جو ہے وہ بھائیوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. ایک اس کا مطلب خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمت، وہ بصیرت جس سے ہر معاملے کی گہرائی میں اتر جانا اور اس کے متعلق صحیح فیصلے کا سمجھ میں آ جانا، یہ والی چیز یعنی معاملہ فہمی کی تعلیم. اور تیرے اوپر اور آلِ یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق پر کر چکا ہے. یہاں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن عاجزی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لے رہے، حالانکہ جس طرح سے حضرت اسحاق پیغمبر تھے اسی طرح حضرت یعقوب بھی پیغمبر تھے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. ان آیات میں چونکہ خواب کا تذکرہ ہے تو خواب کے حوالے سے ایک حدیث سن لیجئے. پیارے نبی فرماتے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے سوا اسے بیان نہ کرے جو محبت رکھتا ہو، اور جب ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوکے، اور وہ کسی کو بیان نہ کرے تو وہ خواب اسے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کروٹ بدل لے، ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، اور بہرحال صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور ایک کسی کا قول ہے کہ خواب یا لبیب کو سناؤ یا حبیب کو سناؤ. لبیب سے مراد عقل مند یا عالم، اور حبیب سے مراد جو محبت کرنے والا ہو، یعنی ان دو کے علاوہ کسی کو خواب نہ سناؤ. ان آیتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے. تو نعمت کب تمام ہوتی ہے؟ نعمتیں کب مکمل ہوتی ہیں؟ جب دین و شریعت ملتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے پاس بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں تب مکمل ہوں گی جب ان نعمتوں کے ساتھ دین مل جائے گا، شریعت مل جائے گی. اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں، تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا ضروری نہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر اندازاً 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی. और ये भी है कि ख्वाब में आपने अरूज देख लिया तो बस अब आप आराम से बैठ जाएं। ख्वाब की ताबीर पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, ख्वाब वो ख्वाब आपने सोते में देखा हो या वो ख्वाब आपने जागते में बुना हो। अब आगे आप देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हकीकत ये है कि यूसुफ और इसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, यानी कुरैश मक्का जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी इसके अंदर निशानियां हैं। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा कि ये यूसुफ, इस कालू ल यूसुफ, कि ये यूसुफ, यानी बहुत ही अंदाज इस तरह का है कि जैसे उन्हें बिल्कुल भी हजरत यूसुफ से कोई लगाव और मोहब्बत नहीं। ये यूसुफ और इसका भाई, ये दो वो उनके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। हजरत यूसुफ और उनके भाई जो थे, चूंकि इनके सौतेले भाई थे और इनकी वालिदा बचपन में इंतकाल कर गई थी, इसलिए हजरत याकूब इन दोनों बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे और मोहब्बत की वजह उनकी सालेहियत भी थी। वो भाई कहते हैं कि दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि कहीं आप तो ऐसा नहीं सोचते, कहीं मैं और आप या हमारे बच्चे, कभी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारे वालिद जो हैं वो फलां से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हमारी अम्मी फलां को ज्यादा चाहती हैं। तो अगर ये कोई ख्याल दिल में है तो इसको दिल से निकाल दीजिए। अगर किसी भाई के साथ, किसी बहन, किसी बच्चे के साथ माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं तो ये सोचें कि उसके अंदर कौन सी सलाहियत है, कौन सी खूबी है, मैं और आप उस खूबी को अपना लें। और कभी भी अपने जत्था होने पर, अपने किसी कारनामे पर कि मैं घर का खर्च चलाता हूँ या मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, इसके बावजूद हमारे वालदैन दूसरे को ज्यादा चाहते हैं, तो कभी अपनी किसी खूबी पर तकब्बुर ना करें, कभी मान ना करें। और वो क्या कह रहे हैं, सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। टोन देखिए कि किस टोन में अपने वालिद के हवाले से बात कर रहे हैं। वालिद का एहतराम करना कितना जरूरी है, लेकिन उनकी टोन चेक करें और मैं और आप अपना जायजा भी लें कि हम अपने वालदैन के सामने किस टोन से बात करते हैं। इनको क्या हो गया, इनको तो पता ही नहीं, इनको तो समझ ही नहीं है, ऐसे जुमलों को अपनी जिंदगी से, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं फेंक दो। तो ये बहुत बड़ा जो आज के दौर का फितना कि हम अगर किसी की मोहब्बत चाहते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसको दूसरों से काट दिया जाए, शोहर को वालदेन से काट दें, बीवी को मेके से काट दें, ताकि ये हमारी ही तरफ पूरी तवज्जो करे। तो नफरतें बोकर मोहब्बतें हासिल नहीं की जा सकती, मोहब्बतें हासिल करनी हो तो मोहब्बतें ही बांटनी पड़ती हैं। और कभी ये ना समझे कि कोई दूसरा इंसान है जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, कोई और रुकावट नहीं, असल रुकावट मैं और आप खुद हैं। अपना जायजा लें, अपनी कोताहियों को दूर करें। और हाबील और काबील के दरमियान भी क्या मामला था, काबील ने हाबील को हसद के बिना पर कत्ल किया, और यही हसद हमें यहाँ दिख रहा है। वो क्या कह रहे हैं, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए, यानी फिर तुम उनकी मोहब्बतों को पालो, लेकिन ये नहीं समझते कि बूढ़ी जान पर क्या गुजरेगी, मासूम बच्चे पे क्या गुजरेगी, या गमजदा बाप मोहब्बत कहाँ दे सकता है। और क्या कह रहे हैं, ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना, ये बहुत बड़ा आज का धोखा कि आज गुनाह कर लो और कल तौबा कर लेना। और ये कल किसने देखी है, कुछ पता नहीं, ये कल हमारी जिंदगी में आएगी कि नहीं आएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जिस गुनाह को इस नियत के साथ किया जाए कि फिर तौबा कर लेंगे, उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ, इस पर इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफला उसे निकाल ले जाएगा, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान क्या बात है, या अबाना, ये अंदाज आप देखिए, हजरत यूसुफ या अबती बड़े प्यार से एहतराम से बात करते हैं, और इनका अंदाज या अबाना, ए अब्बा क्या बात है, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके बिल्कुल सच्चे खैरख्वाह हैं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये आप देखें अमूमन रिश्तेदारियों में इस तरह से मोहब्बतों का इजहार होता है। दिल पर हाथ रख कर कहते हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और दिल के अंदर परेशानी हो रही होती है कि हाय ये फिर आ गए। तो इस तरह से मोहब्बतें नहीं, रिश्ते सच्चाई की बुनियाद पे रखें, दिल में अदावत हो और जुबान पे खैरख्वाही, तो ये चीज जो है वो मोमिनों को जेब नहीं देती। क्या कह रहे हैं कि कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चट चुगलेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा, हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक तो ये कि पैगंबर से वो खेल कूद की इजाजत ले रहे हैं, तो जो सेहतमंद खेल है बहरहाल खेले जा सकते हैं, कोई उसके अंदर शरण ममानियत नहीं है, अच्छी जिस्मानी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज इसको किया जाना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा है और तबीयत की ताजगी के लिए भी। बाप ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया ना फाड़ खाए जबकि तुम इससे गाफिल हो। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर जो डर बैठा हुआ था, आपको हजरत यूसुफ से इतनी मोहब्बत थी कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और भाइयों पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए अंदेशा कर रहे हैं कि कहीं भेड़िया ना फाड़ खाए और तुम गाफिल हो, तुम बैठे हुए हो। उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारे होते इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। यानी खुद ही अपनी असलियत बता दी कि हम किस लेवल के लोग हैं। और क्या है, उन्होंने हजरत याकूब का जो खौफ या अंदेशा था भेड़ियों के खाने का, उसी से इस चीज को पिक कर लिया कि हम इसी बहाने के जरिए से हजरत यूसुफ को गायब करेंगे। इस तरह इसरार करके जब वो इसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ देंगे, तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा और ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। यानी बी रिलैक्स, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप हक पर हैं, तो इत्मीनान रखिए, सुकून रखिए, और अल्लाह ताला यही सुकून जो है वो हजरत यूसुफ के अंदर उंडेल रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि ये लोग अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं, इन्हें नहीं मालूम कि जिस कुएं के अंदर ये डाल रहे हैं अपने तई खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसी कुएं के अंदर जाना हजरत यूसुफ के उरूज का जरिया बनेगा। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए। शाम को वो क्यों आए, इसलिए कि रात की तारीकी में वो अपने वो जो चेहरे के तासुरात हैं उनको छुपा सकें और ये भी साबित कर सकें कि हम तो सारा दिन उसे ढूंढते रहे, और ये भी कि शाम हो जाए तो तलाश का वक्त निकल जाए और अगले दिन तक मामला जो है वो तकरीबन हल हो जाए। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था। आप देखें कि एक गुनाह कितने गुनाहों का पेश खेमा बनता है। अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए अब उन्हें 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अपने सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों, वलो कुन्ना सादिकीन। तो गोया यहाँ भी वो खुद ही अपना बता रहे हैं कि हम सच्चे नहीं हैं और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। भेड़िया आकर खा गया और वो यूसुफ के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे। अब वो कैसा कमीज लेकर आए कि खून तो लगा हुआ है लेकिन कमीज किसी जगह से फटी हुई नहीं है, और बहरहाल जो झूठ होता है वो अपने निशान छोड़ जाता है। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। काला बल सव्वलत लकुम अंफुसुकुम अम्रा, यानी अफसोस के तुम अपने नफ्स के दाम में फंस गए। ये कहकर गोया हजरत याकूब ने उनकी सारी कहानी के घरोंदे को पाश पाश कर दिया। और क्या कहते हैं, अच्छा सबर करूंगा और बखूबी करूंगा, जो बात तुम बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। फसबरुन जमील, अल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। आप देखें कि वो बच्चा जिसकी जुदाई हजरत याकूब को थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त न थी, अब बरसों की जुदाई पड़ गई। यहाँ सब्रुन जमील, बेहतरीन सब्र क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र पर बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, ना रो, अल्लाह से डर और सब्र कर। तो उसने कहा, आपको मेरी मुसीबत का क्या पता। और फिर जब लोगों ने उसे बताया कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वो घबरा गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाई और आपके दरवाजे पे कोई दरबान ना था। उनको आकर उसने बताया कि मैंने आपको पहचाना नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र तो सदमे की पहली चोट पर होता है। तो फिर सुंदरुन जमील। हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सबर देखते हैं और औलाद के दुख पर पैगंबर की दुआ हमें नज़र आ रही है। हज़रत याकूब ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा सबर करूंगा जिसमें शिकवा ना हो। उधर एक काफिला आया और उसने अपने सके को पानी लाने के लिए भेजा। सके ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। काला या बुशरा हाजा गुलाम। तो हमने कुरान से ये बात ले ली। क्या ले ली? आप अक्सर सुनते होंगे कि बुशरा नाम रखें तो उसके बाद बेटा होता है। लोगों ने ये तासुर इसी आयत से लिया है कि या बुशरा हाजा गुलाम, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। इन लोगों ने इसको माले तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा इससे बाखबर था। यानी ये सारा प्लान अल्लाह का था। अल्लाह ताला इसके जरिए से हज़रत यूसुफ को उन हालात से निकाल कर बामे उरूज तक ले जाना चाह रहे थे, और ये लोग तो उसका जरिया है। बहरहाल इससे हमें ये पता चलता है कि कभी इंसान अपने आप को बंद गली में महसूस करे तो समझ जाए कि अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब कर लिया है ताकि हम अल्लाह के और करीब हो जाएं, और जो इम्तिहान अल्लाह के करीब ले आए वो जहमत नहीं वो रहमत होता है। अल्लाह ताला से आफियत मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला आफियत का मामला रखे। आखिरकार उन्होंने इसको थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के इवज बेच डाला, और वो इसकी कीमत के मामले में कुछ ज्यादा के उम्मीदवार न थे। ये आयत भी हर मामले में याद आती है। एक तो बहरहाल यहाँ से ये असूल है कि चूंकि चोरी का माल था और चोरी का माल जो है वो जितनी कीमत पर भी बिके लोग उसे बेच डालते हैं, और दूसरा ये इसको मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी पर भी इस आयत को फैला सकते हैं कि बसा औकात हमारे पास बहुत कीमती चीज होती है जिसकी कीमत का अंदाजा भी हमें नहीं होता और हम उसे जाया कर देते हैं। और दुनिया तो अच्छे लोगों की कम ही कीमत लगाती है, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है। मिस्र के जिस शख्स ने इसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको अच्छी तरह रखना, बाई नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। हम ये जानते हैं कि ये जिस शख्स ने खरीदा था ये अजीज़े मिस्र था, वजीरे खजाना था, एक हाई पोस्ट पे था, और अल्लाह ताला ने देखे हजरत यूसुफ के लिए किस तरह से राह हमवार की कि उन्हें ना सिर्फ ये कि ठिकाना दिया बल्कि एक बड़े हकूमती घराने में उन्हें एक इज्जत का मकाम दिया ताकि वो हकूमत के असरारो रमूज से वाकिफ हो सके और ये भी जान सके कि ऐसे घरानों में अखलाकी करप्शन कैसी होती है, माली करप्शन कैसे होती है। जब तक आप बुराई को भी अपनी निगाहों से नहीं देख लेते तो आपको नहीं पता होता कि आप इस पर किस तरह से काबू पाएंगे। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। दीन की तालीम बाप से ली और यहाँ रहकर उन्होंने दुनियावी तालीम पाई। और हम यहाँ बहरहाल ये भी देखते हैं कि जो मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं और इम्तिहानात बुलंद दर्जों को पाने की सीढ़ियां बन जाते हैं। वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने काम करके रहता है। अल्लाह के काम को रोकने की ताकत किसी में नहीं है, अल्लाह की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर अक्सर लोग जानते नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम ये पढ़ भी रहे हैं और हम ये जानते हैं। अल्लाह हमारा ईमान मजबूत कर दे, और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने इसे कुव्वते फैसला और इल्म अता किया। तो यहाँ आप देखें कि जवानी में इल्म का मौजूद होना और राइट टाइम पर राइट डिसीजन की पावर होना ये कितनी बड़ी नेमत है। इसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए और दुआएं भी करनी चाहिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफा फरमा। इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो इस पर डोरे डालने लगी। हम ये जानते हैं कि हज़रत यूसुफ बहुत ज्यादा खूबसूरत थे और जाहिर है कि ये एक सियासतदान का घर था जिसका शौहर जो है वो बहुत ज्यादा बाहर के कामों में मसरूफ था, अपनी औरत को टाइम नहीं प्रॉपर दे पाता था या उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखता था। तो यहाँ पर ये चीज बड़ी जरूरी है कि शौहर को चाहिए कि वो औरत के जज्बात का ख्याल करे, उसकी जरूरियात को पूरा करे, और औरत को भी चाहिए कि वो शौहर के जज्बात का ख्याल करे और उसकी जरूरियात को पूरा करे ताकि वो गलत राह की तरफ ना निकले। और यहाँ हम उस औरत का हाल देख रहे हैं कि वो उस पर डोरे डालने लगी। वरावदत हुल्लती, यानी वो उसको फुसलाने लगी, अपना हम ख्याल बनाने लगी। वो जो सोच रही थी वो चाह रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वही सोचें। और एक दिन दरवाजे बंद करके बोली, आ जा। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी कदर और मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं। आप देखें कि हजरत यूसुफ पहले मोहब्बत से आजमाए गए, हजरत याकूब की मोहब्बत उनके लिए आजमाइश का जरिया बनी, फिर भाइयों की नफरत उनकी आजमाइश का जरिया बनी, फिर अब ये मोहब्बत की आजमाइश, एक औरत की मोहब्बत की आजमाइश उनके लिए जरिया बनी। और हम ये भी देख रहे हैं कि आपका पहला इम्तिहान तो मुसीबत का था, दूसरा इम्तिहान मासीयत का इम्तिहान, अल्लाह की नाफरमानी की दावत। और यहाँ ये लफ्ज़, इस पर आप गौर कर लीजिए, हुआ फी बैतिहा, कि वो उसके घर में थे, वो उसके एक तरह से गुलाम थे, उसका हुक्म मानना उन पर लाजिम था, वो नौजवान थे, वो खूबसूरत भी थे, वो दियारे गैर में भी थे, अपना कोई कुंबा कबीला नहीं था, माँ बाप देखने वाले नहीं थे। और ये कि जो दावत दे रही है वो भी एक बड़े खानदान की खातून है, यानी वो बुराई छुपाने पर भी कुदरत रखती है। तो इतने बहुत सारे माहौल के होते हुए नेकी पर जमना, और फिर वगल्लकतिल अबवाब, एक नहीं, दो नहीं, तीन, सारे घर के दरवाजे बंद करके उसने गुनाह की दावत दी। तो यहाँ आप देखें, गैर इस्लामी माहौल में, दयारे गैर में किस तरह से ईमान को बचाया जा सकता है, किस तरह हया पर कायम रहा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं हजरत यूसुफ, अल्लाह की पनाह, माज अल्लाह, इन्नहु रब्बी अहसना मसवाया। ये बात हमेशा याद कर लें जब भी कोई गुनाह का मौका सामने आए, कि मेरे रब ने मुझे इतनी अच्छी कदरों मंजिलत अता की, अल्लाह ने मुझे ठिकाना दिया, मुझे इतनी बहुत सारी नेमतें दी, और मैं रब की नाफरमानी करूं। और यहाँ रब्बी से मुराद जो है वो अपना उनका आका भी है, जो अजीज मिस्र ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की है, मुझे ठिकाना दिया है, सारा बंदोबस्त किया है, तो मैं उसकी खयानत करूं। और एक तरफ वो उस औरत को भी ये तवज्जो दिला रहे हैं कि तुम अपने शोहर के साथ क्यों खयानत करती हो। और इसी चीज को, हुआ फी बैतिहा को आप ही अफी बैतहू करके पढ़कर देखें, कि आप एक बहसियत खातून अपने शोहर के घर में हैं, उसका हुक्म मानना आपके ऊपर लाजिम है, उसको खुश करना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको खर्चा देता है, वो आपकी जरूरियात पूरी करता है, और अगर वो आपको किसी बुरे काम का हुक्म देता है, किसी गलत काम पर मजबूर करता है, तो अपने आप को इसी स्टेज पर रखें कि इन्नहु रब्बी अहसना मसवाया, कि मेरा रब मुझे इतनी अच्छी कदर व मंजिलत उसने बख्शी और मैं रब की नाफरमानी करूं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता। वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, ये हम्मत वो इरादा जो दिल में हो, और हम्मा यानी गैर इख्तियारी ख्याल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गर्मी का रोजा हो और ठंडे पानी का ख्याल तो दिल में आता ही है, तो बिल्कुल इसी तरह से जवानी हो और बुरा ख्याल जहन में आ सकता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए गुनाह, वसवसा और ख्याल को माफ किया है जबकि वो इस पर अमल ना करे, और गुनाह का इरादा करके छोड़ दे तो उसको एक नेकी उसकी लिख ली जाती है। लौला बुरहाना रब्बी, अगर वो अपने रब की बुरहान ना देख लेता, यानी रब की दलील उनको समझ में आ गई, इल्म आता है, दलील मिलती है, तो गुनाहों से बचना आसान होता है। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर करें। अल्लाह ताला हम से, हमारे शोहरों से, हमारी औलादों से बदी और बेहयाई को भी इसी तरह से दूर करे, और हमें वो इल्म और वो हिकमत समझा दे कि किस तरह से हम अपने ईमान को बचा सकते हैं। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था, आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बुराई नहीं कर रहे और दरवाजे बंद हैं, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए। और उसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींच कर फाड़ दिया, दरवाजे पर दोनों ने इसके शोहर को मौजूद पाया, यानी गैर मुतवक्को तौर पर उसका शोहर जो है वो घर आ गया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घर वाली पर नियत खराब करे, और इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। इस बात से हमें पता चलता है कि ये मोहब्बत नहीं है, जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ पर दूसरे की तकलीफ का एहसास होता है, दूसरे के दर्द का एहसास होता है और आप दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने क्या कहा कि वो कैद किया जाए, उसे सख्त अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। यानी कम तरीन अल्फाज में हजरत यूसुफ ने इस वाक़े से इजहारे बिरात साबित किया। इस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी और ये सच्चा है। जब शोहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो इसने कहा कि तुम औरतों की चालाकियां वाकई बड़े गजब की होती हैं। यानी शोहर को ये बात मालूम हो गई कि कसूर उसकी अपनी बीवी का है। किसी बुजुर्ग का ये कौल है कि वो कहा करते थे कि मैं शैतान से ज्यादा औरतों से डरता हूँ, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने शैतान का जिक्र किया तो फरमाया कि शैतान का मकर कमजोर है, और जब औरतों का जिक्र किया तो फरमाया तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। शैतान को तो हम देखते हैं वो चोरों की तरह छुप कर मकर करता है, लेकिन औरत सामने आकर मकर करती है। लेकिन ये मकर करने वाली औरत कौन है? ये इस कमाश की औरतें ही मकर करती हैं, जो सौले औरतें हैं वो इस जुमरे में नहीं आती। और क्या कहा, वाकई बड़ी गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। तो यहाँ वो बात की तय को पहुंच गया और उसने अपनी औरत को सजा देने की बजाय क्या किया, मिट्टी डाल दी उस वाकये पर। और ये बड़े बड़े सियासतदानों के घरों का नक्शा यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वो स्कैंडल के डर से इस तरह की बातों को छुपा दिया करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस करप्शन से और इस बेहयाई से हमें बचा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपके शायद ख्वाब का तذکرہ है, मफहूम है उस हदीस का कि दो फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले एक तनूर के पास, जहां से चीखें बुलंद हो रही थीं और मर्द और औरतें लटके हुए थे उस आग में नीचे की तरफ, और आग के शोले उनके ऊपर चढ़ रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा कि ये कौन है, तो आपको बताया गया कि ये जना करने वाले मर्द और औरतें हैं। और इस वाक्य में हमने ये भी देखा कि तन्हाई जो है वो बहरहाल शैतान को दावत देने वाली चीज है। किसी भी औरत के साथ, किसी गैर महरम मर्द के साथ तन्हा होना तीसरा वहां पर शैतान होता है। तो ख्वा वो फिजिकली तन्हा हुआ जाए या सोशल मीडिया के थ्रू तन्हा हुआ जाए, शैतान जो है वो उसमें जरूर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी। अजीज़े मिस्र ने तो बहुत कोशिश की कि वो इस स्कैंडल को छुपा दे, लेकिन जो मुहावरा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, जाहिर है ये स्कैंडल जो है वो औरतों तक पहुंचा। और औरतें आपस में, जैसे इस कमाश की औरतों का ये मिजाज होता है कि वो स्कैंडल्स में दिलचस्पी लेती हैं। अच्छा, फलां की लव स्टोरी या फलां का ब्रेकअप, मैं और आप अपना भी गुफ्तगुओं का जायजा लें, कहीं हमारी गुफ्तगु का महवर इस किस्म की बातें तो नहीं होती। तो बेमकसद बातें बेमकसद जिंदगी की तरफ इशारा करती हैं, और बामकसद जिंदगी में इंसान बामकसद बातें ही करता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि इस्लाम का हुसन ये है कि आदमी लायानी बातों को छोड़ दे, और ये तो लायानी नहीं बल्कि लव बातें हैं। ऐसी बातों से मोमिनों को दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रही हैं आपस में, उनको क्या गुफ्तगू है कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। यानी एतराज इश्क पर नहीं है, बल्कि एतराज किस बात पर है कि गुलाम से इश्क कर रही है। इश्क की करना होता तो अपने किसी स्टेटस के बंदे के साथ इश्क करती। उसने जो उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की। उसने जियाफत में क्या किया कि हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। ये खैर आप देखते हैं कि ईरानी कल्चर में, अफगानी कल्चर में ये चीज पाई जाती है कि वो खाने के बाद जब फ्रूट सर्व करते हैं तो हर एक को अलग अलग फ्रूट और अलग अलग छुरी सर्व करते हैं, ये उनका कल्चर था। फिर एन उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकल आ। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गई। जिसको कहते हैं ना मरऊब रह जाना, मबहूत रह जाना। या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्यारे नबी की एक हदीस का मफहूम है ना कि निस्फ हुसन दिया गया था, इतने वो हसीन और खूबसूरत नौजवान थे, तो वो सारी औरतें दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी। यानी वो देखने में इतनी मबहूत या महव थी कि उन्हें पता ना चला और वो छुरी उनके हाथ पे लग गई। और बाज स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ खुद काट लिए ताकि हजरत यूसुफ जो है वो भाग कर उनके पास आए, हाथ पकड़े और उनको बैंडेज लगाए और बेसाख्ता पुकार उठी हाशा लिल्ला। हाशा लिल्ला जो है, आप जैसे सुबहान अल्लाह कहते हैं, ये उसी तरह का लफ्ज है। ये शख्स इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। गोया उसने सच साबित करने की कोशिश की, तुम इतनों के बीच में उसका जलवा बर्दाश्त ना कर सकी। सोचो मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी जब मैं तन्हाई में उसके साथ दिन रात होती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की मगर ये बच निकला। ये जो रिझाने वाला, माइल करने वाला ये जो जज्बा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा है कि वो औरतें जो रिझती हैं और रिझाने की कोशिश करती हैं, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है। और क्या कहने लगी कि अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। यानी अभी भी उसकी यही कोशिश है कि किसी तरह ये मेरी बात मान ले। हवस की मोहब्बत में ऐसा होता है कि ऐसी मोहब्बत में कोई नाकाम होता है तो वो इंतकाम लेते हैं। और आप यही बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि मोहब्बत में नाकामी पर वो महबूबा के ऊपर तेजाब डाल दिया या खुदकुशी कर ली और उसे भी गोली से मार दिया। तो ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। ये वालदैन की तरबियत का असर है। इस चीज की फिक्र है कि मैं इस बेहयाई के काम से बच जाऊं। पहले एक खातून थी और अब तो पूरे, आप कह लें एक तरह से जो इलीट क्लास की खवातीन थी, वो उनसे इस कदर इम्प्रेस हो गई। तो आप सोचें कि वो इतनी औरतों का मुकाबला करना एक मर्द के लिए किस कदर मुश्किल है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि वो वक्त करीब है जब मुसलमान का उम्दा माल बकरियां होंगी जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। यानी दुनिया के अंदर रहते हुए बाज औकात, बाज माहौल, बाज जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ दीन बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी महफिलों से, ऐसी दोस्तियों से तन्हाई ज्यादा बेहतर है। और उस हदीस को भी याद कर लीजिए कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर की जन्नत है। और क्या कहते हैं हजरत यूसुफ के, अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा। वह अकुम मिन अल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में शामिल होकर रहूंगा। तो पैगंबर भी देखे अपनी पाकदामनी पर गरूर नहीं है, अल्लाह से मदद तलब करते हैं। तो कभी ये ना कहें कि हम बड़े नेक हैं, हम बड़े पारसा हैं, हम कोई गुनाह नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह से दुआ करने वाले हों कि अल्लाह ताला हमें बुराई से दूर रख। हमारे बच्चों से परवरदिगार तो बुराई को दूर कर ले। कभी अपनी तरबियत पे मानना हो, कभी अपने तकवे पे मानना हो। और जिसे दुनिया मॉडर्नाइजेशन कहती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह में वो जाहिलों का काम था। यहाँ देखें, फस्तजाबा लहू रब्बहू, उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों की चालें उससे दफा कर दी। यानी हजरत यूसुफ को इतनी मजबूत सीरत अल्लाह ताला ने अता की कि उन औरतों की चालें नाकाम होकर रह गईं। बेशक वही है जो सब सुनता और सब कुछ जानता है। फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वो उसकी पाकदामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरी निशानियां देख चुके थे। पुराने जमानों से हुक्मरानों का ये वतीरा रहा है कि वो सवाले फितरत लोगों को अपने मफाद के लिए जो है वो जेल में डाल दिया करते हैं। उस हदीस को याद कर लीजिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सात आदमी हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उसमें एक शख्स वो है जिसे किसी असरो रसूख और हुस्नो जमाल वाली औरत ने अपनी तरफ बुलाया मगर उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी आप गौर करें कि खुद किसी ऐसी चीज को प्लान करना या चाहना तो दरकिनार, अगर कोई और दावत भी दे तो अल्लाह ताला हमारी औलादों को और हमें ये जज्बा दे कि हम उसको झटक सकें और हम उसे ये बता सकें कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। अब यहाँ आप देखें कि मजीद अब क्या कैद खाने में मामला होता है। कैद खाने में दो गुलाम और भी इसके साथ दाखिल हुए। कैद खाने के अंदर और लोग भी होते हैं, कैसा माहौल होता है, कोई कत्ल करके आया हुआ होता है, कोई मुजरिम होता है, और बहरहाल जो अच्छी सीरत पे लोग होते हैं वो हर जगह अपनी सीरत को बरकरार रखते हैं, माहौल को असरअंदाज नहीं होने देते। एक रोज उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। वो दोनों गुलाम हजरत यूसुफ के पास किस लिए आ रहे हैं? उनके एहसान की वजह से, उनके हुस्ने सुलूक की वजह से। और मोहसिन किसको कहते हैं? मोहसिन वो नहीं होता कि जो कोई अच्छा करे तो आप उसके साथ अच्छा करें, अगर लोग बुरा करें तो आप उनके साथ बुरा करें। और हम यहाँ ये भी देख लें, अपने बारे में सोच लें कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी हमारे बारे में क्या राय है। अल्लाह करे कि हमारी बच्चियां ससुरालों में जाकर और हमारे बच्चे अपनी अमली जिंदगी में जहां भी जाएं यही टाइटल पाएं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। और ये भी चीज जहन में रहे, जब तक कि हमारा किरदार पुख्ता ना हो, हमारा लोगों के साथ मामला अच्छा ना हो, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक सच्चाई, अमानत, इखलाक, खिदमत खल्क का पैकर बने रहे, फिर दावत का काम शुरू किया। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आपके दावत के जवाब में लोगों ने कैसा रद्दे अमल दिखाया। और हजरत कतादा हजरत यूसुफ के बारे में कहते हैं कि आप बीमारों का इलाज करते, गमगीनों को तसल्ली देते और इबादत में मशगूल रहते। यानी उस जेल खाने में जितने उनके पास वसाइल थे, अखलाक का बर्ताव, अपना खाना दे देते होंगे, किसी का आराम का ख्याल कर देते होंगे, किसी बीमार की बीमार कुर्सी कर देते होंगे, इयादत कर देते होंगे। तो ये रवैये हैं जो मुझे और आपको अपनाने हैं, और नेकी हमेशा जाहिर हो कर रहती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। अपनी कोई बड़ाई नहीं है, पहले ही उस मरहले पर अपने रब का तारुफ करा दिया कि ये सलाहियत या ये इल्म जो है ये मेरे रब ने, परवरदिगार ने मुझे दिया है। जब दावत की धुन हो तो कितनी खूबसूरती से गुफ्तगू का रुख दावत की तरफ फेरा जा सकता है। और उन्होंने क्या कहा कि वाकया ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते, अपने बुजुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया है। यहाँ पर आप देखें कि अभी वो उनके ख्वाब की ताबीर उन्हें नहीं बता रहे हैं, और चूंकि अब वो ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमतन गोश होकर उनके सामने बैठे हैं, बात सुनने पर पूरी तरह आमादा हैं, उस वक्त अपनी दावत की बात कर रहे हैं। तो ये भी मेरे और आपके सीखने की बात है, एक तो मौके से फायदा उठाना और दूसरा जब लोग सुनने के लिए आमादा हो, तैयार हो, उस वक्त उन्हें दीन की बात पहुंचाना, उन्हें दीन का पैगाम देना, ये तरीका हमें यहाँ से सीखना है। और तीसरी चीज वो क्या बता रहे हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों का तरीका इख्तियार किया है। हम कुरान में बार बार बाप दादा का जिक्र पढ़ते हैं कि जो जालिम लोग हैं, जो शिर्क पर जमे हुए हैं, वो भी बाप दादा का हवाला देते हैं, और हम बार बार ये कहते हैं कि हमने बाप दादा की बातों को मनोअन तस्लीम नहीं करना। लेकिन अगर बाप दादा नेकी पर हों, वो तौहीद पर हों और वो सालेह हों और उनकी अच्छी बातों को अपनाना, फॉलो करना उनके लिए सदका जारिया है, और अगर कोई गलती है तो उनके लिए दुआए मगफिरत करना और अपनी इसलाह करना है। हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि इसने अपने सिवा हमें किसी का बंदा नहीं बनाया। कितनी नेमतें होंगी जेल में, कितने वसाइल होंगे, कितना कोई कंफर्टेबल होंगे उस जेल में, लेकिन इस जेल में भी वो शुक्र के शुक्र अल्लाह ताला ने ईमान की तौफीक बख्शी है, शुक्र अल्लाह ने देखने वाला सुनने वाला बनाया। यानी कितनी बहुत सारी नेमतें हैं जिन पर हम हर तरह के हालात में शुक्र अदा कर सकते हैं। ऐ जिंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो, बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। कितनी अच्छी बात है, एक अच्छा सा सवाल कर रहे हैं जो उनको सोचने पर मजबूर कर दे। अल्लाह ताला उनकी जुबान से दावत को किस तरह से कहलवा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं, बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए हैं, अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। यानी अगर जन्नतों को पाना है तो अल्लाह की इताअत के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह ने उनके लिए कोई सरहद नाजिल नहीं की, फरमा रवाई का इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही ठेठ सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। यानी उन्हें तौहीद की तालीम दे दी, उनके अंदर हक का बीज बो दिया। ऐ जिंदा के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम में से एक तो अपने रब शाहे मिस्र को शराब पिलाएगा, यानी अपनी जॉब पे बहाल हो जाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे हो। हजरत यूसुफ चाहते थे कि फुर्सत का एक लम्हा भी जाया ना हो, और उनका ये ख्याल भी था कि मुमकिन है जो रिहा होने वाला है वो हक का बीज अपने साथ ले जाए और दरबारे शाही में वो हक का बीज लगा दे, और जिसकी मौत करीब है मुमकिन है सच्चाई को अपना ले, कबूल कर ले और उसकी आकबत संवर जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ख्वाब जब तक उसकी ताबीर ना की जाए परिंदे के पाँव पर है, जब इसकी सही ताबीर कर दी जाती है तो वो वाकई हो जाता है। ये मसनद अहमद की हदीस है। अच्छा, यहाँ पर बहरहाल मेरे और आपके सीखने का ये असूल भी है कि गमों को इग्नोर करें और प्रोडक्टिव काम करें। इस वक्त जो मसाइल हैं, आप मुश्किलात में हैं, आप तन्हाई में हैं, आप कैद कर दिए गए हैं और एक गम है, खौफ है, तो गमों को इग्नोर करके, खौफ को पसे पुश डाल के आप पॉजिटिव थिंकिंग भी रखें और पॉजिटिव काम भी करें, और इन हालात में जो काम, जो नेकियां की जा सकती हैं उन्हें करने का प्लान बनाएं। फिर उनमें से जिसके मुतल्लिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा अपने रब शाहे मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब शाहे मिस्र से उसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। ये है कि हम तदबीर के मुकल्लिफ हैं, मगर तकदीर वो रब पर मुनहसिर है। रजीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबीयन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ आप देख रहे हैं कि शैतान ने भुला दिया, शैतान हमें हमारी नमाजें भुला देता है, रक्तें भुला देता है, और हम याद करें कि कोई नेकी का हमने इरादा किया हुआ था और कहीं हम भूले तो नहीं हुए, कहीं शैतान ने हमें हमारी नेकी तो नहीं भुला दी। तो बहरहाल अल्लाह का जिक्र हमें जो है वो शैतान के हमलों से महफूज रखेगा। एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ऐ अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। तो तवील मुद्दत के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया। आप देखें कि जब रब का इज़्ज़न होता है तो अल्लाह ताला सबब भी पैदा कर देते हैं। और बादशाह को ख्वाब आया, और बादशाह को कैसा अजीब सा डरावना ख्वाब आया कि उसने देखा कि 7 दुबली गायें हैं जो अपने से बहुत भारी 7 मोटी ताजी गायों का गोश्त खा रही हैं, और गोश्त खाकर उन्हें खत्म ही कर दिया, और ये सारा गोश्त चट करने के बाद भी वो दुबली की दुबली ही हैं जैसे पहली थी। और दूसरा मंजर उसने ये देखा कि 7 सूखी बालियां हैं जो 7 हरी भरी और सरसब्ज बालियों के ऊपर लिपट गई और उन्हें भी सुखा दिया। तो इस ख्वाब को देखकर बादशाह जो था वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया और डर गया। तो इसलिए उसने अपने दरबारियों से पूछा कि कोई मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताए। हम देखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ख्वाब के बाद आजमाइश में डाले गए। अब ये चौथा ख्वाब है इस सूरत में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उरूज का दौर शुरू होगा। उस लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इसको आप यूं समझ लीजिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी वो बजाय इसके कि अपने इल्म की कमी का एतराफ कर लेते, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये ख्वाब ही बड़ा परेशान सा बेरब सा ख्वाब है, डरावना ख्वाब है, तो ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती और हम इनका मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था, उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई। उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में भेज दीजिए। अब यहाँ उस शख्स की बात के जो जिंदा बच गया और जो दोबारा अपनी जॉब पे बहाल हो गया और शाहे मिस्र को शराब पिलाने की ड्यूटी पे बहाल हुआ, बादशाह ने ख्वाब का तذکرہ किया तो उसे वो अब बात याद आ गई कि जब वो कैद खाने में था और हजरत यूसुफ को ख्वाब सुनाया था और उन्होंने कैसी बिल्कुल सही और दुरुस्त ताबीर की थी और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी, तो उसे फौरन ये बात याद आ गई। तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ, मुझे कैद खाने में भेज दीजिए। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाता है, उसने जाकर यूसुफ से कहा, ऐ सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। ना सलाम ना दुआ, और जाते ही मतलब की बात कर रहा है। वो ख्वाब के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं, वो ख्वाब को एज इट इज बयान कर रहा है कि जिसको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं, 7 सूखी, शायद कि मैं उन लोगों के पास जाऊं और शायद कि वो जान लें, यानी ख्वाब की ताबीर जान लें, या इससे मुराद ये है कि वो आपकी कदर मंजिलत जान लें और उनको ये एहसास हो जाए कि उन्होंने किस तरह के अजीम इल्म वाले बंदे को उन्होंने कैद कर रखा है। यहाँ जो वो कह रहे हैं ना, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए सच्चे सरापा रास्ती, अल्लाह करे अल्लाह हमें भी और हमारी औलाद को भी ये टाइटल दे दे। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे, और इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकाल लो, और बाकी को इसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा कि बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बता रहे, बल्कि उस मसले का हल भी बता रहे हैं कि खुशहाली के इन इब्तदाई 7 सालों में आने वाले कहत के दौर के लिए क्या पेशबंदी की जाए और गल्ले को किस तरह से महफूज रखा जाए। और इसमें गोया उन्होंने कहत के बाद कहत की भी एक तरह से पेशन गोई की, और कहत के बाद अच्छे दिन आने की खुशखबरी भी दे दी, जिसका जिक्र बादशाह के ख्वाब में नहीं था। और यहाँ इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, जो आयत नंबर 47 में है कि जो तुम खाओ या जो तुम फसलें काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए बस उसे निकाल लो और बाकी को बालों ही में रहने दो। तो यहाँ पर आप प्यारे नबी की इस हदीस को याद कर लें, अगर जरूर ही ज्यादा खाना हो तो क्या किया जाए, एक हिस्सा खाने, एक हिस्सा पानी पीने और एक सांस के लिए रखो। ये तिर्मिजी की हदीस है जिस पर हम में से कोई भी, बहुत ही कम लोग होंगे जो अमल करते हों, खास तौर पर अफतारी के वक्त में। अमल करने वालों के लिए इस दुनिया में भी बशारते हैं, और जाहिर है कि अगर वो अल्लाह को राजी करने के लिए ये करेंगे, अल्लाह के हुक्म को समझते हुए करेंगे, तो उसका फायदा दुनिया और आखरत दोनों में देखेंगे। और यहाँ पर हजरत यूसुफ जो है वो ये भी बता रहे हैं कि युगासुन्नास, यानी बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रस्सी की जाएगी, वह फी यासिरून, वो रस निचोड़ेंगे, यानी खास तौर पर साकी के लिए एक और उन्होंने खुशखबरी दी कि वो जो शराब को कशीद करके यानी रस निचोड़ कर वो जो जूस पिलाता था वो अपनी उसकी जॉब जो है वो बरकरार रहेगी। बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ, यानी जब बादशाह को पता चला तो उसने फौरन कहा कि ऐसे बेहतरीन शख्स को, इल्म वाले को तो मेरे पास लेकर आओ। मगर जब शाही फरस्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा अपने रब के पास वापस जा और इससे पूछ के इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब तो इनकी मकारी से वाकिफ ही है। यहाँ आप खास तौर पर आप देखें कि इतनी मुद्दत कैद खाने में रहने के बाद जब रिहाई का मौका आ रहा है तो रिहा होने से इनकार कर रहे हैं, गोया वो चाह रहे हैं कि मैं किसी गुनाह का दाग अपने दामन पर लेकर बाहर नहीं आना चाहता, पहले मेरी बेगुनाही को साबित किया जाना चाहिए कि मैं बेकसूर हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत यूसुफ की तारीफ करते हुए कि अगर मैं इतनी मुद्दत जेल में रहता जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे हैं और फिर मुझे रिहाई के लिए बुलाया जाता तो फौरन कबूल कर लेता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अपनी आजजी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इस पर बादशाह ने इन औरतों से दरियाफ्त किया, यानी बुलाया खवातीन को और उनसे मामला पूछा, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने यक जुबान होकर कहा हाशा लिल्ला, हाशा लिल्ला, ये कलमा एक तो सुभान अल्लाह का कायम मकाम है और दूसरा ये कलमा उस वक्त बोला जाता है जब किसी को इल्जाम से बरी करना हो, हमने तो उसमें बदी का शायबा तक ना पाया। अजीज की बीवी बोल उठी, यानी जब सब औरतों ने सच बता दिया तो जुलेखा के पास भी सच बताने के सिवा कोई चारा ना रहा, और हक बात जो किसी दबाव की वजह से छुपी हुई थी अब वो दबाव दूर होने से हक वाजे हो गया। कहने लगी अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फिसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यानी आप देखें सच को आंच नहीं जो सच्चा होता है अल्लाह ताला उसकी सच्चाई को, उसकी बेगुनाही को साबित कर देते हैं। हजरत यूसुफ की बेगुनाही को अल्लाह ताला ने साबित किया, हजरत आयशा की बेगुनाही को अल्लाह ताला ने साबित किया। तो सच्चाई साबित होकर रहती है, और जुर्म का सबसे बेहतर और अव्वल दर्जे का जो सबूत है वो खुद मुजरिम का एतराफ है। तो यहाँ मुजरिम खुद एतराफ कर रही है कि वो मैं ही थी जो मैं उसको फुसलाने की कोशिश कर रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह ताला कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें दुश्मनों की चालों से, शैतान की चालों से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला हमारी हया की, इज्जत की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें हमारी बुराइयों के शर से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बना दे, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जिनके वालदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, ईमान वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, और जिनके वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह ताला हमें वो नेकियां करने की तौफीक दे जो उनके नामा अमाल में इजाफे का बायस बने। आमीन या रब्बल आलमीन।